समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मतिथि। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज़, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा।
Army Chief says situation is sensitive but stable on the northern borders. Affirms forces are well poised to deal with any adverse situation.
महाकुंभ के शुरू होने पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया।
कोल्ड वेव ग्रिप्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू प्लंज बाय 2-3 डिग्री सेल्सियस, डेंस फॉग इफेक्ट्स दिल्ली बाउंड ट्रेन सर्विसेज।
और खोखो विश्व कप 2025 आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Sonmarg Tunnel. So let's start a discussion with the great words of Ralph Waldo Emerson, who said, life is a journey, not a destination.
और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।
एब्सोल्युटली मुकेश, एंड एज वी ऑल नो, नेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद इनॉग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर्स प्रेस्टिजियस 6.5 किलोमीटर सोनमार्ग टनल टुडे। दिस इंजीनियरिंग मार्वल प्रॉमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज लाइफ इन द रीजन। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट मेक्स द सोनमार्ग टनल ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग, इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट एंड how it stands among other iconic infrastructure projects in the country. So Mukesh, what is the Sonmarg Tunnel, if you could tell our listeners?
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग सुरंग आधुनिक इंजीनियरिंग का 6.5 किलोमीटर लंबा चमत्कार है। ये गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ता है। इससे पहले की कठिन लंबी घंटों लंबी यात्रा घटकर अब केवल 20-25 मिनट की रह जाती है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि खराब मौसम इन दो स्थानों के बीच यात्रा को वास्तव में बहुत कठिन बना देता था। अब सभी मौसम वाली सुरंग की बदौलत सोनमर्ग तक पूरे साल आसानी से आवाजाही हो सकती है और इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है क्योंकि सोनमर्ग जो है बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और खूबसूरती जो वहां की है वो देखने के लिए पर्यटक पूरे वर्ष वहां जाना चाहते हैं, लेकिन कठिन मौसम, जो मौसम की कठिनाइयां होती थी उसकी वजह से नहीं जा पाते, लेकिन अब इस टनल के शुरू होने से निश्चित तौर पर पूरे साल भर लोग वहां जा पाएंगे।
So more tourist footfalls, isn't it?
बिल्कुल।
Yes, now let's also look at why does this tunnel matter? Well, this tunnel isn't just about cutting travel time, it's about opening up new opportunities. Sonmarg is known for its breathtaking landscapes and cultural heritage, but because of limited access, it hasn't reached its full potential as a tourist destination. Now that's set to change, like Mukesh was saying. And with easier connectivity, Sonmarg will likely attract more visitors, not just from India, but around the world. Tourism means business, jobs, and better economic opportunities for the local population, so everybody stands to gain.
बिल्कुल, इसके लाभ जो हैं पर्यटन के साथ नहीं रुकते। सोनमर्ग सुरंग व्यापार को बेहतर बनाने और रणनीतिक तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र लद्दाख तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जोजिला सुरंग परियोजना का पूरक है जो अब भी निर्माणाधीन है और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। और आइए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ना भूलें, बेहतर सड़कों का मतलब नागरिकों और सैन्य कर्मियों दोनों के लिए सुगम परिवहन है।
एंड मुकेश, लेट्स आल्सो टेल आवर लिसनर्स हाउ वाज द टनल बिल्ट। वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोनमार्ग टनल बिगन इन 2015 एंड वाज कंप्लीटेड इन 2024। It's equipped with cutting-edge technology like real-time traffic monitoring and advanced safety systems, setting a new standard for road infrastructure in the region. And this was no small feat, Mukesh, because it took years of hard work by engineers and workers to bring this project to life.
बिल्कुल अभिषेक, भारत के जो और भी कई ऐसे इंजीनियरिंग उल्लेखनीय चमत्कार हैं, इनमें सोनमर सुरंग बुनियादी ढांचे में भारत की अविश्वसनीय प्रगति का सिर्फ वो एक उदाहरण है। आइए कुछ अन्य अद्भुत परियोजनाओं पर भी नजर डालते हैं। तो अटल सुरंग की अगर हम बात करें जो 2020 में शुरू की गई थी, और ये 9.02 किलोमीटर की ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ये दुनिया की सबसे लंबे राजमार्ग सुरंगों में से एक है और इससे मनाली और लेह के बीच यात्रा का समय बहुत अधिक कम हो गया है।
Yes, Mukesh, and apart from the Atal Surang, the Shyama Prasad Mukherjee Tunnel, this is also another one. And this is 9.28 kilometer road tunnel with that connects Udhampur to Ramban on the National Highway 44. And it bypasses areas prone to avalanches and bad weather, making travel between Jammu and Kashmir faster and safer.
बिल्कुल, और पीर पंजाल रेलवे सुरंग की अगर हम बात करें, इसे बनिहाल और काजीगुंड सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये 11.21 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग भारत में सबसे लंबी है। इसने कश्मीर तक रेल यात्रा को बहुत आसान और तेज बना दिया है।
Yes, so Mukesh, what does all this mean for the future of the region? Well, simply put, it's all about transformation, from improved travel times to enhanced safety, from opening up opportunities for tourism to boosting economic activities. The Sonmark Tunnel is a milestone in regional development, and it's also helping pave the way for a brighter, more connected future, not just for Jammu and Kashmir and Ladakh, but for India as a whole.
बिल्कुल, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर क्षेत्र इस तरह की परियोजनाओं के साथ विकसित हो रहा है, ये स्पष्ट है कि यात्रा, व्यापार और पर्यटन का चेहरा कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। सोनमर्ग सुरंग इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे नवीन इंजीनियरिंग दुनिया के कुछ सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण इलाकों की क्षमता बढ़ाने में मदद कर रही है। भविष्य में विकास के साथ लद्दाख और इससे आगे की यात्रा बहुत आसान होने वाली है।
Absolutely, Mukesh, and the Sonmark Tunnel is a game changer for Jammu and Kashmir. From boosting tourism to improving trade and strengthening national security, its impact will be felt for years to come. And when we think about the Atal Tunnel and the Pir Panjal Tunnel and others, we see a nation determined to break barriers, both natural and man-made.
बिल्कुल, इनमें से प्रत्येक सुरंग, जिनमें आज शुरू की गई सोनमर्ग सुरंग भी शामिल है, केवल परिवहन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे चुनौतियों पर काबू पाने, लोगों को आपस में जोड़ने और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परियोजनाएं ऐसे अनगिनत व्यक्तियों की दूरदर्शिता, नवाचार और कड़ी मेहनत के लिए श्रद्धांजलि के रूप में भी खड़ी हैं, जो ऐसी उपलब्धियों को संभव बनाते हैं।
Yes, so to conclude our discussion today on the Sonmark Tunnel, Mukesh, these tunnels are more than just concrete and steel. They are lifelines that connect people, cultures and regions, making the world a little smaller and a lot more accessible.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो अभिषेक, आज से प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हो गया है और प्रयागराज में पौष पूर्णिमा का अमृत स्नान के साथ ही 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। और आज गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई।
पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ 2025 के प्रारंभ होने और पहले स्नान के अवसर पर ही पूरी दुनिया से महाकुंभ नगर स्थित मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही स्नान घाटों में लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। सुबह 9 बजे तक ही 60 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली थी। दो दिन से यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी था। बड़ी संख्या में आज विदेशी श्रद्धालु भी यहां पहुंचे थे, जिनमें इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। सरकार ने महाकुंभ को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पवित्र स्नान को देखते हुए सरकार ने यहां आने वाले लोगों के लिए पूरे प्रबंध किए हैं।
शुभ पर्व है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करते हुए मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए।
आज के स्नान को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद दिखी। महाकुंभ को लेकर इस बार सरकार के निर्देश पर बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई है, जिसका असर सोमवार को पहले स्नान पर्व दिखाई दिया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस बार ये आस्था और आधुनिकता का संगम है।
इस बार का कुंभ आस्था और आधुनिकता का संगम है। हम लोगों ने जो पारंपरिक पुलिस व्यवस्थाएं हैं उसके अतिरिक्त अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करके बेहतर व्यवस्थाएं यहां के श्रद्धालुओं को दी हैं।
स्नान को लेकर संत समाज में भी काफी उत्साह देखने को मिला। देश विदेश से पहुंचे संतों ने पौष पूर्णिमा पर स्नान किया और व्यवस्थाओं को लेकर गदगद दिखे। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने कहा,
पहला स्नान अद्भुत स्नान। आज जब स्नान करते हुए जो मैंने उनके चेहरों पर जो खुशियां देखी है ना, तो लगता है कि स्वर्ग मिल गया, पुण्य मिल गया, सब मिल गया, सब मस्त थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव गाते हुए लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, मस्त हो रहे थे और स्नान कर रहे थे।
पौष पूर्णिमा के स्नान को लेकर यातायात सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर खास प्रबंध किए गए थे। सरकार ने इस बार भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ का संदेश दिया है, जो पहले प्रमुख स्नान पर साकार होता नजर आया। आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
और अभिषेक, गुजरात के अहमदाबाद में हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति से पहले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 11 जनवरी से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आसमान में तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 जनवरी को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आरंभ किया। यह उत्सव 14 जनवरी को उत्तरायण तक चलेगा। इस महोत्सव में 47 देशों के 143 पतंगबाजों के साथ साथ 11 अन्य भारतीय राज्यों के 52 प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। गुजरात के 11 शहरों से 417 पतंग प्रेमी भी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल 11 देशों के राजदूत इस उत्सव में शामिल हुए हैं, जिससे इस आयोजन की वैश्विक अपील और बढ़ गई है। यह उत्सव अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, धोर्डो, शिवराजपुर बीच और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित गुजरात के कई स्थानों पर एक साथ मनाया जा रहा है। घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुजरात सरकार ने चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पतंगबाजी के दौरान पतंग उड़ाने से पक्षियों को होने वाले चोटों के बारे में चिंता दूर करने के लिए गुजरात सरकार ने करुणा अभियान शुरू किया है। गुजरात में पतंग उद्योग का मूल्य 400 करोड़ रुपयों से अधिक है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन धार्मिक महत्व भी रखता है, क्योंकि यह दान पुण्य के माध्यम से पुण्य प्राप्त करने की प्रथा से जुड़ा है, जिसमें गायों को अन्न खिलाना और गरीबों को दान देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव परंपरा, संस्कृति और वैश्विक भागीदारी को जोड़ता है, जो इसे गुजरात की विरासत का एक अनूठा उत्सव बनाता है। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
और अभिषेक, आज का दिन एक और खास बात है, और वो है पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार खुशी और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों की तरह इस त्यौहार को भी आग जलाने और मानव जाति की खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करने की रस्मों के साथ मनाया जाएगा। बच्चों ने लोहड़ी के गीत गाते हुए दरवाजों पर जाकर मिठाई मांगना भी शुरू किया है। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। यह प्रसिद्ध दुल्ला भट्टी का वो गीत है जिसे वे सभी लोग गाते हैं जो एक दूसरे घर लोहड़ी मांगने जाते हैं, चाहे वे किसी भी उम्र के हों। यह गीत स्वाभाविक रूप से उनके मुख से निकलता है। शाम को घर पर पूजा करने के बाद लोहड़ी जलाई जाएगी और सभी लोग पड़ोसियों के साथ इकट्ठे बैठ कर त्योहार मनाएंगे और अपने बुजुर्गों द्वारा उनके बचपन में मनाई जाने वाली लोहड़ी के अनुभव को भी सुनेंगे। इस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए सभी के बीच उत्साह उनके चमकते और मुस्कुराते चेहरों पर देखा जा सकता है। यह त्योहार नव विवाहितों और नवजात शिशुओं के माता पिता के लिए और भी अधिक खुशनुमा हो जाता है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर तियां दी लोहड़ी मनाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। यह यह एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है जो एक बेटी के जन्म का सम्मान करता है और उन्हें समाज में सम्मान और गर्व के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित करता है। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
The people of Assam is celebrating Magh Bihu, the vibrant harvest festival, also known as Bogali Bihu and Magor Domahi. This Bihu is celebrated over 2 days. It is the first festival of the year that brings people of various communities together to enjoy the winter crops and pray for prosperity for the rest of the year. We have more from a correspondent.
Today is Uruka, and as part of the Magh Bihu celebration, people building makeshift cottages called Bhelaghar using hay from the harvest fields. People are also constructing mazes for the bonfire. They will prepare food inside these huts tonight and a community feast to be held on this Uruka night. The mazes will be burned early morning tomorrow and their ashes to be spread on the farmland to make the soil more fertile. Tomorrow, people will take a bath early in the morning and play traditional Assamese games like tekeli bhonga and buffalo fighting. There are also cock fights and egg fights. People eat and share traditional Assamese foods and sweets on this occasion. In urban areas, people are purchasing symbolic ready-made mazes for bonfire due to lack of open spaces and non-availability of hay. Aminul Haq Zaddar, Akashvani News, Guwahati.
The Chennai International Book Fair, which is Asia's most popular book fair, will be held for 3 days from the 16th to the 18th of this month. The event gains most significance as this is all during the Pongal holidays. We have a report.
Over 60 countries will be participating in this book fair. The Directorate of Public Libraries and the Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation will be a part of the exhibition. Last year, 700 MOUs were signed between Tamil publishers and their global counterparts, furthering the literary collaboration and cultural exchange. This year's will be Time Traveled with Tamil, from classic to modern, highlighting the age-old language and everything connected to it. The government will unveil its global translation grants program during the event. The grant from the state government will benefit publishers from Asian, African, European and Anglophone countries. Over 200 titles have been identified in the regional language for translation. The book fair features a combination of international conference, rights trade and literary events. Children's books and writings by women will be a special attraction during this international book fair. Joy, Akashvani, Chennai.
और खेल जगत की गतिविधियों पर भी नजर डाल लेते हैं। रांची में आज महिला हॉकी इंडिया लीग में शाची राड़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला जीएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब से होगा, मैच शाम 6 बजे से होगा। और पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स का सामना आज शाम राउरकेला में दिल्ली एसबी पाइपर से होगा, मैच रात 8:15 बजे से खेला जाएगा।
And the Khokho World Cup 2025 will begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi today. The inaugural edition, backed by the Indian Olympic Association, will feature 20 men's and 19 women's teams. Today, Indian men's team will start their campaign with the opening match against Nepal at 8:30 p.m. On the other hand, Indian women's team will kick off the campaign tomorrow against the Republic of Korea, and you can catch the live streaming of the matches on DD Sports TV channel. And on to some business news. Benchmark domestic equity indices today ended lower, in line with global markets. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex tanked 1,049 points, or 1.36%, to close at 76,330. Similarly, the Nifty 50 at the National Stock Exchange shed 345 points, or 1.47%, to settle at 23,086.
और अब समय है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं शौक बहराइची को। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनका वास्तविक नाम रियासत हुसैन रिजवी था। ये बहुत प्रसिद्ध शायर थे। नेताओं और गलत कार्यों में लिप्त व्यक्तियों पर कटाक्ष करने के लिए जो उन्होंने अपने शेर का काफी इस्तेमाल किया था, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता होगा कि शेर को लिखने वाले शायर का नाम शौक बहराइची है। शौक बहराइची का जन्म 6 जून 1884 को अयोध्या के सैयदवाड़ा मोहल्ले में एक साधारण मुस्लिम शिया परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम रियासत हुसैन रिजवी था, जो बाद में बहराइच में रहने के कारण बहराइची हुआ। यहीं पर उन्होंने गरीबी में भी शायरी से नाता जमाए रखा।
Yes, and Madan Puri passed away on this day in 1985. He was an Indian actor in Hindi and Punjabi films. His brothers were actors Chaman Puri and Amrish Puri. As a character actor, mainly negative roles villain, he acted in about 430 films in a career spanning over 50 years. Puri had an acting career spanning over 40 years from the 1940s to the mid-1980s. He appeared in more than 430 films. His film debut was titled Ahimsa in 1946. Madan made an average of 8 films annually, playing villains and negative characters, and the heroes or heroines, uncle, father or elder brother, grandfather, police officer and politician. He also starred in several Punjabi films. Let's listen into a dialogue from one of his movies.
Sab samajh gaye na?
Yes, boss.
Kuch bhi ho jaye. ये इलेक्शन मुझको जीतना है, रुपया मैं पानी की तरह बहा दूंगा। मेरे पीछे करोड़पति पार्टी, तुम लोग शांतिनगर जाकर हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे रहना। वहां की सड़कें, पानी, अस्पताल सब ठीक हो जाना चाहिए। गांव की एक भी वोट सामने वाले को नहीं जानी चाहिए। और फिर गांधी टोपी और खद्दर के लिबास में गांव वाले तुम्हें सोशल वर्कर ही समझेंगे।
लेकिन सेठ जी, इलेक्शन के दिन वहाँ कुछ गंडकों जरूर होना चाहिए, ताकि अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट देना चाहे हम ताकत से रोक सकें।
अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, इलेक्शन से पहले मैं गांव पहुंच जाऊंगा और गुंडों का इंतजाम मेरे पास है। अभी देखो गाड़ी का टाइम हो गया, तुम लोग जाओ, चलो तो जल्दी करो।
और अभिषेक, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को भी हम याद करते हैं आजादी के सफर में।
Long before the revolt of 1857, India's tribal communities gave their lives in opposing the colonizers. Tilka Manji was one of such pioneer Adivasi freedom fighters. He attained martyrdom on the 13th of January, 1784.
Determined to defend his people and land, Tilka organized the Adivasis into an army trained in the use of bows and arrows. In 1770, there was a severe famine in the Santhal region. People were dying of hunger. Tilka looted the treasury of the East India Company and distributed it among the poor. Inspired by this noble act of Tilka, many other tribals also joined the rebellion. With this began his Santhal Hool, the revolt of the Santhals. He continued to attack the British and their allies from 1771 to 1784.
Today we also remember Fakir Mohan Senapati, who was also known as the father of modern Oriya literature.
Born on January the 13th, 1843, Fakir Mohan Senapati was a prolific author and reformer, whose writings also infused the masses with nationalism.
Senapati translated the Ramayana, the Mahabharata and Gita from Sanskrit to the Oriya language. Senapati entwined nationalism and language together, as he believed that nationalism was determined by language. He said that a nation cannot progress by losing its mother tongue, and believed that the development of a nation's language and literature is fundamental for the advancement of a country.
Fakir Mohan Senapati's contribution to Indian literature remains unparalleled and will continue to inspire the coming generation.
और भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे की आज पुण्यतिथि है। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाना उनका सपना था, उनका मानना था कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। किराना घराने की सशक्त हस्ताक्षर स्वर योगिनी प्रभा अत्रे को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 2022 में सम्मानित किया गया। प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत के विषय पर संगीत पढ़ाती रही, व्याख्यान प्रदर्शन करती रहीं और लिखती रहीं। विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहीं। उनके नाम 11 पुस्तकें एक चरण से जारी करने का विश्व रिकॉर्ड भी है।
James Joyce passed away on this day in 1941. He was an Irish novelist, poet and literary critic. He contributed to the modernist avant-garde movement and is regarded as one of the most influential and important writers of the 20th century. Joyce's novel Ulysses 1922 is a landmark in which the episodes of Homer's Odyssey are paralleled in various literary styles, particularly stream of consciousness. Other well-known works are the short story collection Dubliners 1914 and the novel A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916, and The Finnegan's Wake, 1939. His other writings include 3 books of poetry, a play, letters, and occasional journalism.
और आज ही भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस सरस्वती राजामणि की पुण्यतिथि है। समृद्ध परिवार से आने वाली सरस्वती राजामणि ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज ज्वाइन की थी और 16 वर्ष की उम्र में ही वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी शब्दों से प्रेरित हो गई थी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। सरस्वती राजामणि अपनी साथी दुर्गा के साथ ब्रिटिश सिपाहियों के खेमे में घुसी। मिशन के लिए उन्होंने अपने केश काट लिए थे और वो लड़का बनकर खेमे में रहने लगी थी। अंग्रेज सिपाहियों के कपड़े, धोती, जूते पॉलिश करती हैं और ये करते हुए उन्होंने कई प्रमुख जानकारियां जुटाई।
Edmund Spenser passed away on this day in 1599. He was an English poet best known for The Fairy Queen, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. And Edmund Spenser is recognized as one of the premier craftsmen of nascent modern English verse and is considered one of the greatest poets in the English language.
और भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अहमद जान थिरकवा की आज पुण्यतिथि है। लखनऊ, मेरठ और फरखाबाद कई घरानों का उन्हें बाद याद था और थिरकवा जी विशेष रूप से दिल्ली और फरखाबाद का बाज बजाने में निपुण थे। पटियाला के स्वर्गीय उस्ताद अब्दुल अजीज खान कहा करते थे कि अहमद जान जब छोटी उम्र से ही तबला बजाना सीख रहे थे तो उनका हाथ तबले पर एक विचित्र प्रकार से थिरकता था, इसीलिए उनका नाम थिरकवा पड़ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने छात्र जीवन में नटखट होने के कारण उनका ये नाम थिरकवा उस्ताद मुनीर खां के पिता उस्ताद काले खां ने दिया था। तबला वादन में थिरकवा ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत शीघ्र ही निपुणता प्राप्त कर ली।
Yes, and Wing Commander Rakesh Sharma was born on this day in 1949. He is an Indian astronaut and a former Indian Air Force officer. He flew aboard Soyuz T-11 on 3rd April 1984 as part of the Soviet Intercosmos program. He is the only Indian citizen to travel in space, although there have been other astronauts of Indian origin who traveled to space who were not Indian citizens.
और कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे की आज जयंती है। उन्होंने कन्नड़ काव्य को सम्माननीय ऊंचाई दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित होने से पहले ही समाज ने उन्हें एक कवि के रूप में अंगीकार कर लिया था। दत्तात्रेय जी के विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में और 1968 में पद्मश्री भी प्रदान किया गया।
Yes, and Shiv Kumar Sharma was born on this day in 1938. He was a classical musician and santoor player who is credited with adapting the santoor for the Indian classical music. As a music composer, he collaborated with Indian flautist Hariprasad Chaurasia under the collaborative name of Shiv Hari and composed music for such hit Indian films as Fasle 1985, Chandani 1989 and Lamhe 1991. Sharma was awarded the Sangeet Natak Academy Award 1986 and the Padma Shri and the Padma Vibhushan, India's fourth and second highest civilian awards in 1991 and 2001. Let's listen in to a hit song composed by him.
आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर सिंह की आज जयंती है। हिंदी और उर्दू के विद्वान थे। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने कविताओं के समान ही चित्रों में भी प्रयोग किए हैं।
Tracy Darrell Atkins was born on this day in 1962. He's an American country music singer and actor. Atkins debuted in 1996 with the album Dreaming Out Loud, released on Capitol Records Nashville. Let's listen in to a hit track of his.
I've reached the only logical conclusion. Love ain't supposed to make sense. This ain't no thinking thing. Right brain, left brain, it goes a little...
और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत की आज जयंती है। शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज, अमर प्रेम कहानी, अमर प्रेम, आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली, अमानुष जैसी कई यादगार फिल्में की हैं, तो क्यों ना उनकी फिल्म का ये गाना सुने।
जय चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या
शाम मस्तानी मदहोश किए जा।
तो श्रोताओं समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। नमस्कार।